आपने कभी देखा कि कभी भी सदके की जब बात होती है तो लोग अमूमन क्या समझते हैं? सदका करना क्या है? बकरा कुर्बान कर दिया जाए, या फिर कहीं से देग पकी पकाई लेकर किसी मदरसे में छोड़ दी जाए, या किसी यतीम खाने में छोड़ दी जाए। और अगर सदका खैरात गरीबों पे करना है तो वो चंद जगहों पे कभी कभार भूल भुला के किसी, और वो भी किसी आम हालात में नहीं, आम दिनों में नहीं, जब कोई मुसीबत आती है उस वक्त सदका करना याद आता है। हमने सदके को मुसीबत के साथ रिलेट कर दिया है कि जब तक मुसीबत ना आए सदका नहीं, तो इसी पर हम राजी हो गए। और ये नहीं देखते कि हमारे ही अंदर कितना ऐसा टैलेंट है, कितना ऐसा जौहर है, क्योंकि इस जमीन पर इंसानी ब्रेन और इंसान सबसे वैल्यूएबल चीज है। यानी जमीन के ऊपर चलने फिरने वाली और जमीन के ऊपर रखी हुई या जमीन के अंदर दबाई हुई चीजों में सबसे कीमती चीज कौन है? इंसान है। लेकिन हमने उसी की कदर नहीं की, उसको तो खत्म करने के मंसूबे बनाते हैं। तरक्की याफ्ता कौमें हमारी बढ़ती हुई आबादी से बहुत परेशान है, वो कहते हैं कि ये इंसान खत्म कर दो, इंसान कम कर दो, यानी सबसे कीमती चीज को खत्म करने के दरपे हैं। और इन इंसानों के जरिए इस जमीन की जो आबादकारी होनी है उसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं, उन वसाइल को कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। अब आप देखें कि हमारे आसपास हमारे ही मुसलमान बहन भाई, या मुसलमान नहीं भी तो जो भी कोई इंसान है, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनकी अपब्रिंगिंग और उनकी जहनी अपलिफ्ट के लिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जितने भी रिसोर्सफुल लोग हैं, अगर आप एक सर्वे करके देखें कि वो सदका कब करते हैं, नंबर एक, और नंबर दो कहाँ करते हैं, तो इस दो जगहों से ऊपर नहीं उठे हुए होंगे। अगर उनको मालूम होता कि जिहाद फी सबीलिल्लाह किस किस चीज़ का नाम है, और माशरे से गुर्बत को मिटाना, जहालत को मिटाना, बेदीनी को मिटाना, बेहिसी को ख़त्म करना, ये सब भी जिहाद की किस्में हैं, और इसके लिए मंसूबे बनाना, ये आला तरीन किस्म है सदका खैरात की, जो सदका जारिया है। क्योंकि वो हदीस में आता है ना कि जाहिदुल मुशरिकीन बे अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व अलसनतकुम, तो जिहाद में माल, नफ्स और जबान, ये सब कुछ शरीक है, सब शामिल है, लेकिन हमें इसका कोई तसव्वुर ही नहीं, एहसास ही नहीं कि ये भी करने का कुछ काम है। आप देखें कि जब आप एक गरीब को खिलाते हैं, खिलाना चाहिए, भूखे को खिलाना चाहिए, इसमें कोई ये ना समझे कि भूखे को ना खिलाया जाए, भूखे को खिलाना चाहिए, वो भी जन्नत में ले जाने वाले कामों में से है। लेकिन थोड़ा सा ज़रा गहराई में भी सोचें, एक ये है कि आपने खाना पकाया और भूखों को थोड़ा थोड़ा बांट दिया और आ गए, मुतमइन हो गए, और एक ये है कि उससे आगे उनके लिए सोचें कि ये कब तक इस तरह मांग के खाते रहेंगे, क्यों ना इन्हें इस काबिल बनाने का भी कोई मंसूबा बनाया जाए मिलजुल कर, कि जिससे ये बाइज्जत तौर पर अपने पाँव पर खड़े हो सकें। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी में सबसे ज़्यादा तादाद किस एज ग्रुप की है? टीन एजर्स की। यानी हमारी आबादी में जैसे होता है ना कि बूढ़े कितने हैं, फिर मेच्योर लोग कितने हैं, फिर जो उससे कम, फिर बच्चे, तो सबसे ज़्यादा हमारी आबादी का बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो टीन एजर्स का है, जिनकी उम्र 9 साल से 20 साल तक है, थोड़ा सा टीन एज से कम भी जाता है। अब आप खुद सोचें कि इस यूथ के लिए हमारे पास क्या मंसूबे हैं, और अगर इसको कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, इसको तालीम नहीं मिलती, इसको तरबियत नहीं मिलती, तो आइंदा 20 साल बाद पाकिस्तान का नक्शा क्या होगा? और जब ये अपनी जहालत की वजह से, लाइल्मी और दीन से दूरी की वजह से माशरे में फसाद करेंगे, तो क्या उस फसाद की जद सिर्फ उनके अपने घरों तक पड़ेगी? क्या वो उन सब तक नहीं जाएगी कि जो अब बेफिक्र हैं अपनी जिम्मेदारी से? एक तो हम सेल्फ सेंटर्ड, अपनी जात से बाहर हमको ना कोई गम है, ना फिक्र है, ना परेशानी, सारे गम अपनी जात के हैं। अपने गमों का जायजा लीजिए कि हमारे गम कौन से हैं। हमारे गम अपनी जात से उठते हैं और अपनी जात पे वापस लौट जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम थोड़े सेंसिटिव हों तो बहन भाइयों का सोच लेंगे, या अपने खानदान का सोच लें, उससे बाहर किस किस का दर्द है आपके अंदर, किसके लिए आप बेचैन हो उठे? एक मुसलमान तो ऐसी बेहिसी की जिंदगी नहीं बसर करता। मुसलमान तो एक जिस्म की तरह होते हैं, उसके तो एक हिस्से को तकलीफ हो तो सारा ही बेचैन हो जाता है। हमारे यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में वक्त ज़ाया कर रहे हैं, यानी ये वो वक्त है जो एक प्राइम टाइम होता है ज़िंदगी का जब सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, और ये एनर्जी कहाँ कहाँ ज़ाया हो रही है। तो इसलिए ये जो उम्मत मुस्लिमा की हैसियत से हमारा रोल है और हमारी जिम्मेदारी है, और ये जिस जिहाद का हमें जाहद फी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया जा रहा है, ये सब कुछ किसी को तो सोचना है। अगर हम में से हर एक ये सोचे नहीं ये मेरा काम तो नहीं, तो किसी और को करना है, किसी और कौन है वो, उसको फिर ढूंढ लाइए कहीं से जो ये करेगा, आखिर किसी को तो करना है। और अगर और कोई नहीं कर रहे तो मुझे अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करनी, क्योंकि मुझे तो खुदा को जवाब देना है। अपने अपने तौर पर ही सोचें कि मैं क्या कर सकती हूँ। इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये था कि जब तक हम दीन की वैल्यूज को एज इट इज़ नहीं लेते, उस वक्त तक हमारी दुनिया भी महफूज नहीं। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि अच्छे फिजिशियंस ना हो, या अच्छे आर्किटेक्ट्स ना हो, या अच्छे इंजीनियर्स ना हो, या माशरे में अच्छे उस्ताद ना हो, या अच्छे काम करने वाले ना हो। लेकिन बात यह है कि अगर माशरे के अंदर अमन होगा, और न सिर्फ ये कि हमारे माशरे के अंदर, दुनिया के अंदर जब तक अमन नहीं, दुनिया के अंदर जब तक बेचैनी है और फसाद है और फितना है, तो ये जितने भी अच्छे फिजिशियंस होंगे और जितने भी अच्छे अच्छे लोग होंगे, इनकी अच्छाई किसको काम आएगी और वो कितना फ़ायदा इंसानियत को दे सकते हैं। खा तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तरक्की पजीर ममालिक हों, दुनिया में जितना फसाद फैल चुका है खुदा से दूरी की वजह से, हिदायत से दूरी की वजह से, उसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी का मकसद महज एक अच्छा फिजिशियन होना ही नहीं, वो तो होना है, और उसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है। क्या आप सिर्फ माल कमाने के लिए या अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए एक अच्छे फिजिशियन बन रहे हैं, या फिर आपका मकसद इंसानियत की खिदमत के साथ उम्मत मुस्लिमा को इज्जत देना भी है। अगर साथ उम्मत मुस्लिमा को इज्जत देना है तो बहुत अच्छा मकसद है, लेकिन बात यह है कि हम में से कितने लोग हैं जो फिजिशियन बनने के बाद ये याद रखते हों कि वो सिर्फ एक फिजिशियन ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ वो एक इंसान भी हैं और वो एक मुसलमान भी हैं, और उनकी जिम्मेदारी इंसान होने के नाते भी कुछ है और मुसलमान होने के नाते भी उनकी जिम्मेदारी। एक अच्छा फिजिशियन जिसको अल्लाह ताला दुनिया में इज्जत देता है, और वो उसके ज़रिए अगर माल कमाता है तो उस माल का वो मसरफ क्या कर रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि वो माल की लालच में ये नहीं देखता कि कोई माल अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता? उसे सिर्फ इससे गर्ज है कि उसके पास फीस आनी चाहिए, उसे इससे कोई गर्ज नहीं कि एक बीमार शख्स कौन है और कितना बीमार है और कितना कराह रहा है। क्या रोज़मर्रा में आप देखते नहीं कि बहुत से लोग बीमार होने के बावजूद इलाज नहीं करा सकते, इसलिए कि वो इतनी बड़ी भारी फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते? ऐसे बीमारों का क्या जुर्म है कि जिनको पहले खाने को ना मिला, उनके अंदर वो रेजिस्टेंस न थी कि वो मुख्तलिफ जरासीमों से बच सकते, और जब वो इन सारे माल न्यूट्रिशन की वजह से और मुख्तलिफ गंदगियों की वजह से बीमार पड़े, तो फिर उनका इतना हक भी नहीं कि वो कहीं जाकर इलाज भी कर सकें, वो कहाँ जाएं? जब आपको कभी दर्द उठती है किसी भी जगह पर, खा दांत में उठे या कहीं और उठे, कभी आपको ख्याल आया रास्ता चलते हुए कि ये गरीब शख्स, अगर इसके दांत में दर्द उठेगी तो मेरे ही जैसी दर्द होगी ना, क्या इसके पास ये सहूलत है जो मेरे पास है कि मैं जाकर इलाज करा रही हूँ? क्या ये भी करा सकता है? और अगर ये नहीं करा सकता तो इसके दर्द की कोई वैल्यू नहीं? क्या ये इंसान नहीं? इसके अंदर कोई एहसास नहीं? या ये कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम क्यों सोचें? आज दुनिया का बड़ा मसला ये है कि जिन लोगों के पास माल है, या वो बुखल का शिकार है या वो इसराफ का शिकार है। बुखल में क्या है कि वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, इसराफ क्या है कि अपनी ही ज़ात के लिए एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। दूसरे के साल में है ये एहसास बाकी नहीं रहा। ये एहसास कौन देता है? यानी मालदार होना, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर फरमाया था कि यानी ये सब बर्बाद हुए जब तक ये अपने दाएं बाएं आगे पीछे खर्च ना करें। तो मालदार होना बुरा नहीं, अच्छा कामयाब बिजनेसमैन होना बुरा नहीं। बुराई कहाँ से शुरू होती? जब ये माल आपके अंदर बेहिसी पैदा करता है, फिर ये बेहिसी दूर कौन करता है? कौन दूर करेगा ये बेहिसी? ये दर्द कौन पैदा करेगा? दीन ही करेगा ना, खुदा का खौफ ही करेगा। तो वो तो किसी तक पहुंचा ही नहीं, वो तो सारी जिंदगी एक ही चीज पढ़ते रहे और एक ही मकसद के साथ कि हमें इतना और इतना बनाना है, इस और इस डिग्री को लेना और इस मकाम तक पहुंचना है, हाँ वो किसी भी कीमत पर हो, तो क्या इन सारे लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना जिहाद में शामिल नहीं? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं ताकि माशरे के अंदर से ये सब तफरीक खत्म हो? ये नारों से तो खत्म नहीं होगी, ये इनकलाबों से तो खत्म नहीं होगी, इसके लिए तो कोशिश करनी पड़ेगी। उसी कोशिश का नाम तो जिहाद है। दीन ने कभी भी ये नहीं सिखाया कि आप दुनिया छोड़ दो, वो दुनिया के सही करने के लिए आया। दीन किस लिए आया और ये जिहाद का भी हुक्म क्यों दिया गया है? अभी आगे भी आप पढ़ेंगे कि मुसलमानों ने जब जिहाद किया और दूसरी कौमों के पास गए तो फिर उन्होंने कितनी खैर पाई। यानी दो रवैये हो सकते हैं, एक ये है कि आप सिर्फ दीन चुन लें या दुनिया चुन लें, और दूसरा ये है कि इन दोनों को साथ लेकर चलें, लेकिन दीन आपकी प्रायोरिटी हो दुनिया पर। इस वक्त हमारा हाल क्या है? या हम दीन की तरफ चले जाते हैं या दुनिया की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जो हमारी असल जिम्मेदारी है कि दुनिया में रहते हुए दीन को साथ लेकर चलें, दुनिया कमाते हुए दीनी जिम्मेदारियां पूरी करें। यानी कोई आपको मना नहीं करता कि आप अच्छी प्रैक्टिस ना करें, अच्छे फिजिशियन नहीं बने, आप बने, आप माल कमाएं, लेकिन इस्लाम यहाँ आकर आपसे पूछता है कि इस माल से आपने जिहाद किया है या नहीं अब। और जब आप फिजिशियन बनने के लिए जद्दोजहद और स्ट्रगल कर रहे थे, उस वक्त आपकी नीयत क्या थी, वहाँ आपसे पूछता है कि आपकी सोच क्या थी, क्या सिर्फ अपनी ज़ात या कुछ और भी। और फिर जब आप आ गए उस मकाम पर जो आपका आइडियल था, वो आपको मिल गया, अब वो आपको अपने लिए नहीं जीने देना चाहता, वो चाहता है कि आप दाएं बाएं भी देखें, क्योंकि ये जो जहानत और इल्म और काबिलियत अल्लाह ने आपको दी है, इससे दूसरी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाएं। और फिर आपको वो आयत याद होगी सूरत आले इमरान की, जिसमें था ना, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ یعنی یہ ساری نعمتیں پا کر آخرت کو نہیں بھولنا۔ انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا۔ یہ ہے ہمارا امتحان کہ دنیا کی نعمتیں پا کر ہم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا فتوفوا
आप जब लफ्ज जहाद बोलते हैं तो आप इमेजिन किस चीज को करते हैं? आपके जहन में क्या तस्वीर बनती? लड़ाई, जंग? मेरे जहन में पता क्या आता है? हलचल। यानी एक ठहरे पर पानी में जैसे कुछ फेंक दिया तो वो हलचल हो गई, मुझे इस तरह की लहरें उठती और हरकत नजर आती। बेसिकली अगर जिहाद को आप हरकत से तशबीह दें और हलचल से दें या ना दें, लेकिन अगर आप इसको इस तरह इमेजिन करें तो यूं लगता है कि जैसे मुजाहिद की जिंदगी वो जिंदगी होती है जिसमें चैन नहीं, यानी चैन इस माने में नहीं कि वो दुनिया की जिंदगी पे मुतमइन होकर नहीं बैठ जाता, करार नहीं, वो ठहरा हुआ नहीं, वो अपनी नेकी पर, अपने काम पर मुतमइन नहीं, वो किसी आन मुतमइन होता नजर नहीं आता कि मैंने जो कुछ कर लिया वो बहुत हो गया, वो एक बेचैन रूह है। यानी दीन जो एहसास आपके अंदर जगाता है वो एक हलचल वाली जिंदगी पैदा कर देता है। जब तक सीरत हमारे सामने नहीं, हम जिहाद का सही मफहूम ही नहीं समझ सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में भी गुजारे थे और 10 साल मदीना में, तो मक्का में कौन सा जिहाद किया था? किया भी था या नहीं किया था? तो आगाज किससे किया था? और सूरत अल फुरकान में क्या फरमाया? वजाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा। जिहाद कबीर किसको कहा गया था? कुरान में आता वजाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा, और इनके साथ जिहाद कीजिए बहुत बड़ा जिहाद। सूरत अल फुरकान मक्का में नाजिल हुई है, वहां तलवार नहीं उठी थी, वहां कौन सा जिहाद कबीर हो रहा था? अल्लाह की बात पहुंचाने का। तो वक्त और माहौल और मौके की मुनासिबत से उसकी सूरतें बदलती चली जाएंगी। मदीना में जिहाद की एक दूसरी किस्म नजर आती है, मक्का में एक और तरह नजर आती है। तो बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक जो जिंदगी बसर की उसमें गार में जाना भी था, उसमें गौर व फिक्र भी था एक तन्हाई में बैठ के, लेकिन जब नबुवत मिली तो दोबारा कभी गार हिरा नहीं गए। क्या वो गोशा आफियत अच्छा नहीं था? पुरसुकून जिंदगी थी, एक खामोश जिंदगी थी, उसको क्यों छोड़ आए थे? या कभी कभी वीकेंड पर दोबारा भी जाते वहां, लेकिन एक वाक्या ऐसा नहीं मिलता कि नबुव्वत मिलने के बाद आप दोबारा गारे हिरा गए हों। वो जिंदगी ठहरी हुई थी, खामोश थी, पुरसुकून थी, वहां सिर्फ अंदर एक हलचल थी। अब उसके बाद बाहर आकर वो अंदर की तो बरकरार रही लेकिन बैरूनी हलचल भी शुरू हो गई। यानी ऐसा नहीं कि हम हिजरत और जिहाद आज नहीं कर रहे, हम सब कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के लिए। कितने लोग हैं जो हर साल वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, लेकिन किस गर्ज के लिए? दुनिया के लिए। हम जद्दोजहद भी कर रहे हैं उसके लिए, भाग दौड़ भी कर रहे हैं, हलचल भी, सब कुछ है। हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि हमारा आज तक ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कि जिहाद है क्या। इसीलिए मैंने पूछा ना कि आपके जहन में क्या आता है, तो आपने देखा कि क्या आया और क्या जवाब आया, बस यही आता है और इतना ही सिर्फ आता है। और जब तक वो ना हो हमारी ज़िंदगी, हम समझते हम जिहाद नहीं कर रहे, और उससे नीचे तो कोई जिहाद है ही नहीं शायद। दो एक्सट्रीम्स है ना, कुछ लोग सिर्फ नफ्स के साथ लगे हुए और कुछ लोग सिर्फ तलवार को जिहाद समझते। ये जो बीच का एक बड़ा गैप है जिसका स्कोप बहुत बड़ा है और जिसकी ज़रूरत भी आज बहुत बड़ी है, उससे गाफिल हैं हम। यानी कुछ लोगों ने तन्हाई में और खामोशी में और खानकाहों में मुराकबे करके जिहाद कर रहे हैं कुछ, और कुछ सिर्फ असलहे के जिहाद को जिहाद समझे हुए हैं। और इन दो एंड्स के बीच का जो हिस्सा है जिससे असल चेंज आता है माशरों के अंदर, उसकी तरफ से हम गाफिल हैं। यानी ना मुझे इससे इनकार है कि इंसान को नफ्स के खिलाफ जिहाद नहीं करना चाहिए, और ना उससे इनकार है इसलिए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते कुछ लोगों के लिए असलह ही चाहिए, वो भी अपनी जगह एक जरूरत है, लेकिन इन दो के बीच में जो एक बड़ा हिस्सा है जिसमें एक बहुत बड़ा स्कोप है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपको नबुवत नहीं मिली, आप एक तरह से जिहाद बिन नफ्स ही की कैफियत में थे। आपने माशरे को कभी कुछ नहीं कहा, कोई अमर बिल मारूफ नहीं किया, कोई नहीं अनिल मुनकर नहीं किया। आप क्या करते थे? अपनी ही तरबियत कर रहे थे एक तरह से। बकरियां चराना भी इसी ट्रेनिंग का हिस्सा था, और उसके अलावा गारे हिरा पे जाना भी नफ्स ही की तरबियत का एक हिस्सा था, गौर व फिक्र करना भी इसी का एक हिस्सा था। लेकिन सिर्फ इसी पे आपने जिंदगी नहीं बसर कर दी, फिर अगला हिस्सा आया, और वो क्या था? कुरान की तालीम का, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का। फिर उसके बाद सिर्फ इसी पे काफी नहीं था, इसी पे बस नहीं हो गया, फिर अगला हिस्सा आया, और वो क्या था? दुश्मन की ताकत को कुचलने का, कि जो बात से और दलील से नहीं समझे थे, ताकि फितना और फसाद खत्म हो। हम अभी तक अपना रोल मुतय्यन नहीं कर पाए, अभी तक मुझे और आपको ये समझ नहीं आया कि मेरे करने का काम क्या है और मेरी लिमिट्स क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं कहाँ खड़ी होती हूँ, मुझे भी कुछ करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो क्या करना। तो जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं महसूस कर पाते, उस वक्त तक माशरे में तब्दीली नहीं आ सकती, दुनिया की फजा नहीं बदल सकती। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने चूंकि वो एक मुकम्मल नमूना थे, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में सारे ही मरहले अमली करके दिखा दिए, नफ्स का भी करके दिखा दिया, और उसके बाद मक्का के 13 साल तालीम और तरबियत का भी करके दिखा दिया, और मदीना के 10 साल ताकत के साथ भी करके दिखा दिया। अब हमारे लिए ये है कि हम डिटरमिन करें कि हम कौन सी जगह पर हैं, हम कहाँ खड़े हैं, और हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं। आप आइडियल सिचुएशन को छोड़ दें, अपनी कैपेसिटी में अपने आप से पूछिए, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी इस्लाम की इज्जत अफजाई नहीं। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस का आखिरी हिस्सा बहुत दिलचस्प है, अल्लाह तुमको इस जिल्लत और रुसवाई से उस वक्त तक नहीं निकालेगा जब तक तुम अपने दीन की तरफ ना लौटो। यानी उस उम्मत मुस्लिमा की जिल्लत और रुसवाई से निकलने का रास्ता क्या बताया? जब तक तुम अपने दीन की तरफ ना लौटो। तो हमें खुद भी दीन की तरफ लौटना है और अपने मासेज को भी इसकी तरफ लौटाना है, जब हमारी हालत बदलेगी। और कोई रास्ता और तरीका नहीं है इस जिल्लत से निकलने का, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, धमाकों से ये काम नहीं होने का। अगर हम ये समझते हैं कि इधर उधर दहशत फैला के या खौफ फैला के हम अपने मसाइल हल कर लेंगे, या सुइसाइड बॉम्बिंग से हमारे मसले हल हो जाएंगे, तो उससे नहीं होने के। और फिर हर एक को अपनी अपनी कैपेसिटी में सोचना है कि कौन किसके काबिल है। यानी सिर्फ इस पर भी बस नहीं, लेकिन जो फील्ड दूसरों का है, अगर हम उसके बारे में हम सोचने लग जाएं, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मसलन मैं और आप अगर ये सोचें कि हम असले से जंग करेंगे, तो जो हमारी न सलाहियत में है न बस में है, उसके बारे में ज़्यादा बातों की ज़रूरत नहीं। वो जिनका काम है वो उन्हीं की जिम्मेदारी उन्हीं से पूछोगी, वो उसके लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है, या हम क्या कर सकते हैं, हमें उस पर सोचकर, खा वो एक छोटा सा काम ही क्यों ना हो, वो करना है, और कमिटमेंट के साथ करना है। क्योंकि वल्लाहु मअस्साबिरीन, हमारी मुश्किल ये कि हम कहीं स्टैंड नहीं करते, हम हवा के ऐसे हल्के हैं कि हर हवा के झोंके के साथ उड़ पड़ते हैं। इधर से एक काम किया, उधर से एक बात सुनी, उसको बंद कर दिया, उधर से दूसरी सुनी, कुछ और शुरू कर दिया, कहीं भी हमारी स्टैंडिंग नहीं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये दुआ मांगने की ज़रूरत है कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबा, व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। जो हक है, जो करना चाहिए, जो तुझे मंजूर है, जो तुझे कबूल है, जो तेरा पसंदीदा है, मेरा दिल उस पर जमा दे और मुझे उस पर इस्तकामत अता कर। वरना ज़िंदगी तो ऐसे ही जकोले खाते गुजर जाएगी, और आगे हिसाब तैयार होगा।
या अय्युहल लजीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बु الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.